हरे कृष्ण। आज गौर शक्ति गदाधर पंडित की शुभ आविर्भाव तिथि है, तो आप जानते हैं गौर पूर्णिमा से आगे पीछे सब जो उनकी जो पार्षद है इनकी आविर्भाव तिथि हुआ। तो माघ शुक्ला त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु की सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी को अद्वैताचार्य, इसी प्रकार आगे पीछे महाप्रभु के आगे पीछे जो पार्षद इनकी आविर्भाव तिथि है। और रथ यात्रा से आगे पीछे आप देखेंगे महाप्रभु जितना भक्त है वो उनके त्रिभाव तिथि हुआ है, जो विशेष करके जो जगन्नाथपुरी में थे इन लोगों का त्रिभाव तिथि रथ यात्रा के आगे पीछे ही है। किसी को भी हेरा पंचमी में, कभी रथ यात्रा के दिन ऐसे ऐसे, क्योंकि वो महाप्रभु की जो विरह है, वो महाप्रभु ऐसे नाचते थे, ऐसे कीर्तन करते, उसको सहन नहीं होता था, इसी समय वो रथ यात्रा के आगे पीछे सबका त्रिभाव है। और महाप्रभु के जो आविर्भाव है इस आगे पीछे महाप्रभु के जो पार्षद इनके लगभग आविर्भाव तिथि है। तो आज गदाधर पंडित जी की आविर्भाव तिथि है, जो महाप्रभु की जो शक्ति है, गदाधर पंडित पुरुष शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणना जहार। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि गदाधर पंडित जो महाप्रभु जी की शक्ति की अवतार है, और जो अंतरंग भक्ति के अंदर जिसको गिना जाता है, तो जो गदाधर पंडित है, माधुर्य रस की जो भी भक्त है, ये गदाधर पंडित के अनुगत है। जैसे सर्व दामोदर है, राय रामानंद आदि है, जगदानंद, ये सब इनका, और श्रीवास आदि जो है, ये जो बात्सल्य दास्य साक्ष्य भक्त जो श्रीवास के अंदर में पंचतत्व में सारे कुछ है। एक तो महाप्रभु के अंश अवतार है अद्वैताचार्य, और महाप्रभु के जो स्वयं जो बलराम है, ये है नित्यानंद, और स्वयं श्री कृष्ण है कृष्ण चैतन्य रूप में। और जी जो भी भक्त है माधुर स्वर के, जो भी भक्त है श्रीवास के अंदर में है, इनके अंतर्गत है। और जो भी माधुर रस के जो भक्त है श्रृंगार रस की, ये गदाधर पंडित पंचतत्व में जो महाप्रभु जो भी पार्षद है सब इसके अंदर ही आते हैं। तो गौर शक्ति गदाधर की आज आविर्भाव तिथि है। तो इनके पिता थे माधव मिश्र और माता जी थी रत्नावती। पहले ये श्रीहट्टो जो बांग्लादेश में है, जो बहुत सारे भक्त जो है श्रीहट्टो में इनका जन्म हुआ। जैसे अद्वैताचार्य है, महाप्रभु के पिता जी जगन्नाथ मिश्र है, इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद जी है, गदाधर पंडित है, तो ये लगभग सब श्रीहट्ट से भक्त है। श्रीहट्ट पूर्व, इनका पूर्व श्रीहट्ट बांग्लादेश में थे। तो वहां से माधव मिश्र गंगा वास करने के लिए इधर नवद्वीप में आ गए, इधर आके रहने लगे। तो यहां और जो रत्नावती है, सती माता से बहुत ही मित्रता थी, बहुत ही प्रेम करते थे दोनों। और माधव मिश्र बस महाप्रभु के पास में, आप लोग जो मायापुर देखे होंगे, तो महाप्रभु का जन्मस्थल उसके बाद कुछ दूर में श्रीवासांगन, अद्वैताचार्य के घर, उसके पास में गदाधर पंडित के घर थे, पास में ही रहते थे और एक साथ में बचपन में खेलते थे। तो महाप्रभु से 2-3 साल की छोटे होंगे गदाधर पंडित, ऐसे तो निश्चित नहीं दिया कौन सा साल में उनका विवाह है। तो बचपन से ही गदाधर पंडित महाप्रभु के बिना नहीं रह सकते थे, हमेशा उनके साथ बचपन जो खेल है उनके साथ ही खेलते थे। और बचपन से बहुत विनम्र स्वभाव के थे गदाधर पंडित, बहुत विनम्र स्वभाव के थे, इसी साथ हमेशा महाप्रभु के साथ खेलते थे। महाप्रभु इनके बिना नहीं रह सकते थे और गदाधर पंडित की महाप्रभु बिना नहीं रह सकते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे। तो महाप्रभु थोड़ा बड़े हुए, उनके साथ एक थोड़ा पढ़ाई में भी पढ़ाई करते थे, और बहुत ही कम उम्र में बहुत ही मेधावी थे, बहुत अच्छा से पढ़ाई किए। और महाप्रभु में पहले दूसरी भाव था कि विद्वत्व, तो लेकिन गदाधर पंडित ऐसे नहीं थे, बचपन से ही वो भक्त थे, उनका भक्ति भाव बचपन से ही था। लेकिन महाप्रभु पहले तो विद्याविलास करते थे, किसी को भी पकड़ते थे, तो गदाधर पंडित को पसंद नहीं होता था, फिर भी बोला इसका जवाब दो, ये कैसे, ये सूत्र ऐसे क्यों, कैसे हुआ, ये शब्द के अर्थ बताओ, ऐसे जो शारीरिक भाष्य है, जो वेदांत सूत्र आदि, इसको ही ज्यादा चर्चा करते थे, सूत्रों का स्थापना करना, खंडित करना है, ऐसे हमेशा करते थे। लेकिन गदाधर पंडित बिल्कुल इसको पसंद नहीं होता था, लेकिन महाप्रभु से उनका अनन्य प्रेम थे, इसलिए महाप्रभु को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए महाप्रभु के घर बहुत समय उनके साथ में रहते थे, महाप्रभु जी के शरीर में चंदन लगा के देते थे, माला पहना देते थे, और महाप्रभु के चरण सेवा की करके महाप्रभु के चरण कमल के पास ही सो जाते थे। उधर ऐसे ही बचपन में हमेशा एक दिन महाप्रभु ने प्रसाद माला को दिया कि भक्तों को सब दे देना, इस प्रसाद को बांट देना। इसी प्रकार गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ हमेशा ही रहते हैं। तो और उनका एक स्वभाव यह था कि कोई वैष्णव जो आते हैं उनको सेवा करते हैं, उनके जाके बिना उससे कुछ सुनते हैं। सर वैष्णव को सब बहुत उनका यह था, वैष्णव सेवा करने का, उनके पास जाने का बहुत ही उनका शौक था, हमेशा जाते थे कोई वैष्णव। तो ऐसे एक बार ईश्वरपुरी पाद भ्रमण करते करते नवद्वीप आए। तो ईश्वरपुरी पाद ऐसे थे जो भक्त होते हैं, क्योंकि ये हम लोग जैसे नहीं थे, उन लोग का जो मन है निमग्न चेतसा, हमेशा कृष्ण की लीला में रहते हैं, निमग्न रहते हैं, स्वाभाविक ज्ञान नहीं रहते हैं। तो ऐसे महान भक्त, लेकिन लोगों को पहचान में नहीं आता था कि ये ईश्वरपुरी कैसे है। तो लेकिन दूसरे जो वैष्णव है वो पहचान जाता है कि इसमें इनका तेज, जो वैष्णव का जो तेज है छुपता नहीं है। एक बार ऐसे ईश्वर आदित्य जी के सभा में जब आए तो पूछा कि आप कौन हो, बोला मैं शूद्र में अधम हूं। तो ऐसे ही रहते थे। तो गदाधर पंडित जाके ईश्वरपुरी के पास जाते थे और उनकी सेवा करते थे, जो भी उनके चरण दबाना है, उनके कपड़े धोना है, तो ऐसे कुछ सेवा उन्हें करते थे। ये स्वभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कृपा है वैष्णव का कृपा होने से जो बहुत दिन तक साधन करने के बाद भी प्राप्त करना कठिन है, वो वैष्णव के आशीर्वाद से हो जाते हैं। तो उन्होंने ईश्वरपुरी जी ने किताब लिखे थे कृष्ण लीलामृत, पता नहीं अभी तो उस किताब को कोई दर्शन नहीं मिलता है कहा गए, लेकिन वो किताब, वो जो ग्रंथ थे, उनको अपने लिखा हुआ ग्रंथ को वो बड़ा विनम्र थे गदाधर जी, उनको शिक्षा दिया था कैसे कैसे क्या है सब कुछ उनको शिक्षा दिया था। इसी प्रकार गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे और नवद्वीप में बस उनकी भक्ति भाव था। तो महाप्रभु गया से आने के बाद, महाप्रभु गया चले गए, गया से जब आया तो महाप्रभु का क्या है, भाव बदल गया, पंडित भाव चला गया, भक्ति भाव की उदय हो गया। तब सारे लोग आके महापुरुष से मिले, तो सोची माता को हर कोई कुछ कुछ बोलते हैं कि इसको ये पिला दो, नारियल पानी पिला दो, ये ठंडे वाला तेल लगा दो, ये वायुवेदी हो गया। तो बाद में श्री पंडित आया, श्रीवास पंडित से महापुरुष ने बताया कि श्रीवास मेरे में कोई वायुवेदी है या मैं पागल हो गया। बोला नहीं प्रभु, ये तो जीव जीव की जो लक्षण है, जैसे होना चाहिए कृष्ण प्रेम की पागलपन, ऐसे तो ये आपका सही लक्षण है। जो ये सची माता को भी समझा दिया कि आप ऐसे कोई कबीरास, कोई ऐसे झाड़ फूकने वाले मत बुलाओ, इसमें कोई ऐसे कोई बीमार नहीं है, ये तो कृष्ण प्रेम में मत तो हो गया है। तो महाप्रभु ने बताया कि काल मैं शुक्लाम्बर के घर पे जाके सब भक्तों से मिलूंगा और अपने हृदय की बात करूंगा। तब जब महापुरुष सारे भक्तों से मिले, भागवत की चर्चा हुआ और सारे भक्त महापुरुष मूर्छित होकर गिर पड़े, गदाधर पंडित कमरे के अंदर ही थे, तो उन्होंने वह बैठे बैठे रो रहे थे। सारे जो भक्त की भाव है, महापुरुष के भाव शांत हो गया, लेकिन गदाधर पंडित के भाव में कोई भाव उनका टूटा नहीं, रोते ही रहा। तो महापुरुष ने पूछा अंदर कौन रो रहे हैं, तो भक्त लोग ने बताया आपका गदा रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला, उनको बुलाया, बहुत आशीर्वाद किया, बोला आप बहुत ही भाग्यवान हैं, बचपन से आपका कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। तीसरी प्रकार पंडित जी उधर रहने लगे, तो महाप्रभु का भाव हुआ और तो हमेशा कृष्ण के रोते थे, गदाधर पंडित पास में रहते थे। एक दिन की बात है, महाप्रभु बिल्कुल पागल जैसे हो गया, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण, गदाधर से पूछा गदाधर कृष्ण कहाँ है। सोची माता लग डर से नहीं आ पाते हैं, निमाई निमाई ऐसे ही करते थे वो निमा। एक तो सोची माता नहीं आ पाती थी, विष्णुप्रिया लक्ष्मी विष्णुप्रिया बीवी नहीं आ पाती थी, इतना महाप्रभु उद्दंड जैसे ये करते थे। तो पागल हो गया, कहा गया गदाधर कृष्ण कहा गया, कहा जाने से कृष्ण मिलेगा। तो गदाधर ने बताया, प्रभु आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे, कृष्ण तो हृदय में है, आप इधर ढूंढिए। तो बोला अच्छा कृष्ण अभी मैं प्राप्त कर। तो तुरंत नाखून देके अपनी छाती को फाड़ने लगा। तो गदाधर देखा महाप्रभु एकदम ऐसे स्वाभाविक गण में नहीं थे, वो तो कुछ भी नक्श छिल फिल देगा शरीर पर, ऐसे हो गया। तो गदाधर पंडित तुरंत हाथ पकड़ लिया, प्रभु अभी अभी तो बाहर चला गया कृष्ण, अभी बाहर चला गया, अभी अंदर है नहीं। तो महाप्रभु ने छोड़ दिया। तो बोला गदाधर कहाँ मिलेगा कृष्ण। तो शोची माता ने देखा छोटे से बच्चा है, कितना निपुणता से महाप्रभु की जो भी शरीर की अनिष्ट जो भी कर रहे थे, इसे गदाधर कैसे अपने इंटेलिजेंस से बुद्धि से महाप्रभु की सुरक्षा कर दिया। इसलिए शोची माता ने गदाधर पंडित को बुलाया कि गदाधर आप हमेशा निमाई के साथ रहना, हम लोग तो जाने में बहुत डरती है, लेकिन आपने ऐसे बहुत शांति से इनको शांत कर देते हैं। तो इसी प्रकार हर एक दिन चैतन्य महापुरुष कीर्तन में कोई नहीं जानते हैं, गदाधर वो कीर्तन कर रहे थे, इसी समय महाप्रभु ने बताया पुंडरीक बाप, पुंडरीक बाप, ऐसे चिल्लाया। अभी भक्तों को पता नहीं लग रहा है कि महाप्रभु पुंडरीक और पिताजी पिताजी ये क्यों बोल रहे हैं। बंगाल में जो पिताजी है इनको क्या बोलता है, बाप। इधर बुड्ढे को बाबा बोलते हैं, उधर बंगाल में अपने पिताजी को बाबा बोलते हैं। तो बोला प्रभु आप किसको बुला रहे हैं। बोला कोई महावैष्णव आने वाले हैं। तो इसी समय पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने राज की थर्ड बार्ट से बहुत पालकिन में बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ भक्त के साथ इन्होंने आके एक छुप के एक घर में रुक रहे थे। तो वैष्णव होगा तो उनकी वेश अलग होना चाहिए, लेकिन इन ये कैसे रहते, एकदम राज की थर्ड बार्ट में रहते थे, बैठते थे बहुत ऊंचा आसन में, बहुत एकदम सफेद जो दूध की फेन है ऐसे जैसे कपड़े उनकी मखमल की है, इधर तकिया पीछे तकिया, पान 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 बहुत खाते थे उसको फूकने के लिए, बहुत सुंदर कटोरी है पीतल पीतल से जो हुका, आप लोग जानते हैं जो उसमें पानी होते हैं और कुछ नशा के नशा टाइप के हैं वो इधर पाइप लगा हुआ खींचते हैं और पानी आवाज करते हैं, उसको हुका बोलते हैं। ब्रज में है बहुत, देखा है ना, ब्रज में है वो पीते हैं लोग। तो वो पीते थे पीतल की, बहुत स्पर्श सब बना हुआ है और दोनों ओर से सेवक लगने मोर पंखा झेल रहे थे, चामर ढुला रहे थे, केशों को जो श्रृंगार है बहुत सुंदर है, सुगंधित तेल आदि देखे, कपड़े भी इतना पहना हुआ है, सबसे महंगा कपड़ा पहन के रखा है। तो ऐसे बैठे थे और मुकुंद जानते तो वो भी ये कि उनकी घर भी चट्टग्राम है, बांग्लादेश में अभी है चट्टग्राम, उनका मुकुंद के घर भी पास में थे, पहले से जानते थे। तो मुकुंद जानते कि गदाधर पंडित वैष्णवों को दर्शन करने में बहुत आनंद लेते हैं, कोई वैष्णव हो ये किसी किसी का स्वभाव होते हैं, जैसे धर्मात्मा प्रभु है वो वैष्णव को सेवा करना कुछ देना इनमें आनंद रखते हैं, तो हर किसी के नेचुरल स्वभाव होते हैं। तो उसमें उनके ऐसे ही था। तो मुकुंद ने बताया कि एक बहुत सुंदर अच्छे वैष्णव आया है, चलो दर्शन के लिए जाते हैं। तो गदाधर पंडित गए, जाके प्रणाम किए, देखे बहुत ऊंचे आसन में ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि बैठा हुआ है और बहुत पान चिबा रहा है, दाम मुंह एकदम ये वोट बगरा लाल हो गया है, ऐसे बैठा है। तो और तिलक भी जो करते थे चंदन से तिलक करते थे, गोपी चंदन से नहीं। तो देखा उनके मन में संशय हो गया, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं ये शरीर जो है शरीर नश्वर है, ये तो मरा हुआ है, पहले से मरा हुआ आत्मा है, परमात्मा है, इसलिए चलता फिरता है, ये शरीर के लिए इतना साजोवाट ऐसे क्यों करते हैं? तो उनके संशय मन में हुआ और मुकुंद इस बात को समझ गया। तो जब संशय हो गया ये वैष्णव बहुत हमेशा मन में ठाकुर जी में रहते हैं, ये तो महान वैष्णव जो है ये विश्वभानु जी है, विश्वभानु के अवतार है पुंडरिक विद्यानिधि, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया बाप पिताजी, क्योंकि महाप्रभु के राधारानी की भाव में अवतरित है इसलिए। तो उनको समाज में नहीं आया, संशय आ गया, तो मुकुंद जब समझ गया तो बोला इसको तो प्रकाश करना चाहिए। तब भागवत से जो श्लोक है तो ठाकुर जी पूतना को कैसे कैसे कृपा किया कि वो 20 स्तन लाकर भगवान को दिए है और भगवान को मानने का कोशिश किया और उसको क्या धात्री गति माता के जैसे गति दे गया। कौन ऐसे दयालु है ऐसे शरण देने वाला? जब इस दया की बात को पुंडरीक विद्या ने श्रवण किया श्लोक मुकुंद गाने में भी बहुत बहुत सुंदर कंठ था, तो बहुत सुंदर ढंग से गाया था और वहां से तुरंत वहां से कूद गिर नीचे गिर पड़ा और वो जो सजावट था वो कहां से सब फेंक फाक दिया, लात मार के फेंक दिया, अपने को कपड़े को फाड़ फोड़ दिया और भाव में मिट्टी में लोटपट कर रहे हैं, बिल्कुल शांत नहीं हो रहा, बहुत सब लोटपाट करके उसमें मिट्टी में सोया हुआ है, उनका भाव की कोई भाव नहीं टूट पा रहा है। तो बाद में गदाधर पंडित ने समझ गया ये तो महान वैष्णव है, इनके चरण में मेरा अपराध हो गया। यहां पे बताते हैं कि जब अपराध होता है, जब अपराध होता है उसकी समाधान तुरंत करना चाहिए, नहीं तो बीज बीज से वृक्ष वृक्ष अंकुर होकर उगेगा और फैलते जाएगा, चित्त धीरे 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 इस अपराध करते करते क्या होगा, इसके चित्त तो विभ्रांत हो जाए और कोई अपराध करके बैठेगा। इसलिए जो अपराध होते हैं उसका निवारण जितना जल्दी हो इतना जल्दी ही करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मेरा आपने जो भी भक्ति है भक्ति को पूरा खा डालेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए जो भी अपराध हो अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी अपराध का निवारण करना चाहिए। तो मुकुंद सोचा कि ये तो अपराध हो गया, आगे चल के इसको अभी ये नहीं करे, तो इसके लिए उन्होंने श्लोक बोला। तो अपराध हो गया, अभी गदाधर पंडित ने सोचा मैं अभी क्या करूं, क्षमा याचना करना है क्या करना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने दीक्षा लेना है, पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना है। तब मुकुंद से बताया, पहले मुकुंद जी ने बताया पुंडरीक विद्यानिधि से बताया कि ऐसे ऐसे है, आपको देखकर इनमें थोड़ा मन संशय हो गया था मन में, तो ये चाहते हैं कि आपसे दीक्षा ले, आरब की सेवा करेगा तो जो अपराध है अपराध क्षमा हो जाएगा और अपने शिष्य में सब हर गुरु अपने बिना ये रखते हैं सुहित अच्छा भावना रखते हैं, आशीर्वाद करेंगे तो अपराध क्षमा हो जाएगा। यदि कोई किसी के प्रति कोई अपराध हो जाए तो पहले शायद विनम्र ये इतना क्षमा याचना करने से भी वो नहीं, उनका हृदय में इतना दया ना हो, तो लेकिन सेवा करने से जरूर दया उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि गुरु दीक्षा लेके मैं सेवा करूंगा। तब जब पुंडरीक विद्यानिधि को बताया इस बात को तो उन्होंने राजी हो गया, बोला ठीक है तो बहुत अच्छा है, विधाता ने मेरे को बहुत अच्छा रत्न मिलाया है। तब उसके बाद उन्होंने दीक्षा दिए और गदाधर पंडित भी कुछ सेवा किए। तो इसके बीच में महाप्रभु जी ने सन्यास लेके नीलाचल चले गए, तो उसी समय गदाधर पंडित साथ में नहीं गए थे, लेकिन जो चैतन्य भागवत है इसके अनुसार महाप्रभु के साथ ही गए थे, चैतन्य चरितामृत के अनुसार वो नहीं गए थे। चैतन्य चरितामृत के हिसाब से नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर पंडित चार साथ में गए थे, और चैतन्य भागवत के अनुसार ये गदाधर भी है, ब्रह्मानंद है, नित्यानंद है, मुकुंद है, तो ये पांच गए थे। तो बाद में जब गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु जी ने उनके रहने की व्यवस्था टोटा, एक यमेश्वर टोटा जो धाम की सुरक्षा करने वाले या दीक्षपाल, चारों ओर दीक्षपाल के रूप में चार पांच शिव जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए है, द्वारपाल के रूप में चार साइड में, तो दक्षिण साइड में एक यह जो यमेश्वर टोटा एक शिव जी है, ये धाम की रक्षा एक द्वारपाल के रूप में रहते हैं दक्षिण द्वार की ओर। तो ये मंदिर के पास एक टोटा मतलब उड़िया, उड़िया भाषा में जो उद्यान होते हैं, जो बगीचा होते हैं, इसको टोटा बोलते हैं। तो टोटा उस बगीचा में, वो बाग में गदाधर पंडित के लिए वो एकदम, आप लोग देखेंगे तो ये बहुत नीचे है, यमेश्वर शिवजी जो है वो छोटा गोबिंद के पास में, चटक पर्वत के पास में बहुत नीचे है मंदिर, आप देखा है बहुत नीचे है। तो वहां पे उनके रहने के लिए व्यवस्था महाप्रभु ने कर दिया, छोटा सा कुटिया बना दिया, और बहुत बड़ा एक विशाल वट वृक्ष है पास में, और चटक पर्वत, चटक पर्वत को महाप्रभु क्या मानते थे, गोवर्धन है। और तब इतना बिल्डिंग होटल नहीं थे, बिल्कुल खाली था, समुद्र जी दिखाई देता समुद्र, तो वो महाप्रभु क्या मानते थे, यमुना जी है ये, और जो जो वट वृक्ष है उसको क्या मानते थे, पंक्षी वट। इसलिए महाप्रभु के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण और अनुकूल स्थिति थे वो जगह, इसलिए महाप्रभु जी वहां पे गदाधर पंडित को रहने के लिए दिए। गदाधर पंडित वहां रह रहे थे और महाप्रभु आते थे, भागवत महाप्रभु भागवत गदाधर पंडित के मुख कमल से श्रवण करते थे, बहुत अच्छा पाठ करते थे। तो प्रभु आगे पंडित पढ़े, भागवत बोसी पढ़े, और ऐसे एक श्लोक है जो महाप्रभु के आगे भागवत पढ़ते हैं और सुधा की राशि राशि सुधा उनके मुंह से निकालते हैं, वो भागवत की जो रस है गदाधर के पंडित के मुख कमल से जो निकालते हैं, एक तो सुधा की जो राशि राशि बहुत सारे सुधा के भंडार निकालते हैं, महाप्रभु बहुत सुख मिलता है। एक दिन महाप्रभु जी आया और आके रेत को हटा रहे, बालू हटा रहे, बालू हटा रहे, अभी कोई नहीं समझता महाप्रभु ये क्या कर रहा है। गदाधर पंडित ने आके हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहा है, फिर गदाधर प्रभु आप क्या कर रही है, बोला गदाधर सुनो, यदि इसमें खुदाई करने के बाद, ये रेता बालू हटाने के बाद कोई अमृत निधि मिले आप लोगे ना, तो गदाधर पंडित बोला प्रभु आपके दिए हुए वस्तु मैंने अपने सिर की मुकुट, सिर की मणिर के रूप में अब धारण करूंगा, अब जो भी देंगे। तब महापुर और रेत बालू हटाते हटाते जो ठाकुर जी का मुकुट है गोपीनाथ जी ये निकल, बोले देखो 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 ये देखो ये क्या है। तो धीरे धीरे सारे लोग आकर रेत को हटाया, सुंदर श्री गोपीनाथ जी के, तो श्री गोपीनाथ जी का प्रकट महापुरु ने यहाँ पे किए, और उनको एक छोटे से कुटिया जैसे बना के उनको सेवा उन्हें प्रतिष्ठा कर दिए और सेवा गदाधर पंडित को दिए। तो ये टोटा गोपीनाथ है, बहुत सुंदर विग्रह है, और अभी भी आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। तो महाप्रभु वो सोचते थे कि ये बंशी वट है जो वट वृक्ष है पास में, और गोवर्धन है महाप्रभु की मनोराम स्थिति है, तो यहाँ पे गोपीनाथ नामकरण कर दिया, ये गोपीनाथ जी है, और टोटा बागीचा में है तो उसके टोटा गोपीनाथ के नाम हो गया। तो पंडित हमेशा उनकी सेवा करते थे। राधा पंडित हमेशा सेवा करते थे और गोपीनाथ जी बस बहुत सुंदर रासविलासी मूर्ति है। तो तब से गोपीनाथ मंदिर में रहकर हमेशा जो भी सेवा करते थे। तो राजा आया, राजा आने के बाद बताया ठाकुर जी की सेवा की मैं व्यवस्था कर दूंगा। क्या कैसे? बोला नहीं, गदाधर पंडित बोलता नहीं, मैं माधुगढ़ी से जो भी मिलेगा इसके द्वारा मैंने गोपीनाथ जी की सेवा करूंगा, जो भी मिले मेरे को उससे सेवा करूंगा, ज्यादा कोई ऐश्वर्य ऐश्वर्य वगैरह हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार हमेशा गदाधर पंडित सेवा करते थे ठाकुर जी के, और वहां पर आके वह भागवत श्रवण करते थे। तो इसी प्रकार एक बार महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बता दिया कि श्रीपाद आप हर साल जगन्नाथपुरी नहीं आना, आप बंगाल में रहकर प्रचार करना। इसलिए प्रचार करियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचार करियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महापुरुष इसमें बहुत ही ध्यान दिए हैं। बोला कि आप आने से 3-4 महीने की प्रचार रुक जाएंगे बंगाल, इसलिए 3-4 महीने आपके लिए छुट्टी नहीं मिलेगा। क्योंकि आते थे 4 महीने तक रुकते थे, फिर जाएगा तो 5-6 महीने तो ऐसे बीत जाएगा, और 6 महीने क्या प्रचार करेगा। इसलिए बोले तो हर साल नहीं आना, कभी कभी आ सकते हैं हर साल नहीं, लेकिन इनका ऐसे भाव है वो तो हर साल भाग के आ जाते हैं, उनके भाव कौन समझा सकते हैं। तो एक साल आ गया, महाप्रभु मिलने की इतना इतना प्यास है नित्यानंद, आया आने के बाद पूरी जब आ गया तो गया नहीं मिलने से, सारे भक्त लोग चला गया, नित्यानंद मिलने के लिए गया ही नहीं। वो एक एक बागीचे में बैठे ध्यान कर रहे थे, बैठे रहते चुपचाप नित्यानंद प्रभु। तो महापुरुष सारे भक्तों से मिले, महापुरुष हंस उठा, जहां नित्यानंद है वहां पर आके नित्यानंद को परिक्रमा कर रहे थे महापुरुष। और उनकी उन्होंने बहुत अलंकार धारण किए थे। तो महापुरुष ने बोलता है तुम्हारा ये जो अलंकार है ये क्या है? नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति है। और बहुत सारी स्तुति किया है जो नित्यानंद को ये करते हैं, निंदा करते हैं, कितना भी मेरा प्रिय हो तो मैं उसका, मेरा वो प्रिय नहीं है। इसी प्रकार ये करते हैं, दोनों भाई उठते हैं, दोनों दोनों को प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं। इसी प्रकार फिर भी नित्यानंद ही रह गया, महापुरुष चले गए, वो जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन किए। जगन्नाथ जी का दर्शन किया और महापुरुष नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो गया, ऐसे नित्य कर रहे थे। तो लोग पूछा कौन है? बोला ये चैतन्य की भाई है। तो बाद में पुजारी लोग प्रसाद दिए, माला दिए, शांति शांति होके उन्हें महापुरुष के पास नहीं गए, गदाधर पंडित के पास चले गए। गदाधर पंडित के पास जाके मिला और तो जाके दोनों गदाधर पंडित को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु आलिंगन किया। और गदाधर पंडित बताते हैं कि जो नित्यानंद को तिल एक तिल भी देख करते हैं तो गदाधर पंडित उनको देखकर भी नहीं देखते हैं। इसी प्रकार बहुत नित्यानंद किए करके बोला ठीक है आप आज इधर भिक्षा करो, आपकी जो भिक्षा है मेरे इधर ही आपको भिक्षा लेना है। तब नित्यानंद प्रभु ने एक मान, एक 1.5 किलो 2 किलो चावल होगा, ये मान है, मन अलग है, मन 40 किलो होता है, एक मान है, कोई ऐसे कुछ बेत से कुछ ये बनाते हैं टोकरी टाइप का, उसमें एक हिसाब की, पहले इतना तोलने वाला नहीं था, अभी तो कंपास का क्या क्या आ गया, पहले उसे वैसे ही तोलते थे, कुछ पात्र बना के उससे ही तोलते थे। तो उसमें एक मान बोलते हैं 2-2.5 किलो जो भी चावल था, ऐसे चावल बहुत सुंदर चावल लेके आए थे और एक सिल्क की वस्त्र गोपीनाथ जी के लिए लेके आए थे। तो बाद में जब निमंत्रण किया तो चावल दिया और कपड़े दिया, बहुत प्रसन्न हो गया, ठाकुर जी के लिए है। इसलिए ठाकुर जी के लिए जो देते हैं भक्तों को इसमें अति प्रसन्न होना चाहिए, अच्छे वस्तु हो, अच्छे खाने का वस्तु हो, अच्छे पहनने का वस्तु हो, अच्छे अलंकार धारण करने वाले, अच्छे पुष्पमाला हो, तो जो सेवक है वो स्वाभाविक प्रसन्नता उनमें होना चाहिए। तो बहुत प्रसन्न हो गए, वो वस्त्र उनके शरीर में लगा दिया, शरीर में लगा दिया वस्त्र, और वो चावल को उन्हें पका। कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या किया, वो जो बाघ था, बाघ से कुछ साग उठा के लाए और इमली के पत्ते उनको पीसा। उनको पीसने के बाद समुद्र के खारा पानी मिला के एक चटनी बना दिए और एक साग जो फ्राई कर दिया, बस इसके साथ ठाकुर जी को भोग लगाया। तो भोग लगाया यहाँ पे गुंडीचा मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर है, महाप्रभु का जो रहने का गंभीरा है, महाप्रभु के उधर खुशबू पहुंच गया, खुशबू पहुंच गया। महाप्रभु आग आकर वो भोगी लगा रहे थे, भोग लगभग समाप्त तो हो गया था, इसी समय आके चिल्लाने लगा हरे कृष्ण बोल के आगे महाप्रभु, और चिल्लाने लगा गदाधर गदाधर। अच्छा तुम जो ये फीस बना रहे हो इसके अंदर मेरे को नहीं रखा, हमको निमंत्रण नहीं किया, हमको बुलाया नहीं, तो इसके अंदर मैं नहीं हूं, ये नहीं हो सकता है। एक तो दिखाया, एक तो नित्यानंद ने चावल लाया, और दूसरी बात है कि गोपीनाथ के प्रसाद है और आपने पकाया, इसमें आप बोलो चाहे ना बोलो मेरा पूरा पूरी हिस्सा इसमें है। तो उनको बुला के ले गए अंदर, ले गए अंदर, लेके बैठने के आसन दिए, तो प्रसाद लेके, और महाप्रभु ने बहुत प्रसन्न कि कितना अच्छा है, इसको जो है इसको खुशबू किसी का मिलेगा, ये जो प्रसाद, जो प्रसाद की जो खुशबू है इतना सुंदर, उसको भी कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। और लगता है तुमने बोला ये चावल कहां से मिला, ये तो कोई साधारण चावल नहीं है जो हमारा अभी जो मिलते हैं, ये चावल नहीं थे, बोले बैकंठ में है और बैकंठ में लक्ष्मी जी इस चावल को पकाती है, यहाँ पे कहीं पे है, नहीं है। तो और बहुत प्रसन्न हो गया, तो बताया महाप्रभु के सामने पूरा लाके रख दिया। महाप्रभु बोला नहीं तीन भाग करो, तीन भाग किए, तो बाद में तीन में बहुत इस प्रशंसक ये करते हुए पूरा प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जो पत्ताल झूठे पत्ताल थे वो सब लोग मिलके पाया। इसी प्रकार ये एक महापुरुष की भोजन लीला है। तो गदाधर पंडित एक बार क्या हुआ, महापुरुष जी ने उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे वृंदावन हो, नवद्वीप हो, विष्णु क्षेत्र है, पूरी हो, ये संकल्प ऐसे लेना है कि मैं यहाँ पे रहकर ठाकुर जी का सेवा जो भी भजन आदि करूंगा, ये क्षेत्र को छोड़कर मैं क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, भले हमारा कुछ भी हो जाए, भले हमारा श्रेयस बीमार हो जाए, नहीं तुरंत दिल्ली चला गया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। क्षेत्र संन्यास कुछ भी हो, मथुरा हॉस्पिटल इतना तक लिमिट रहना है, ऐसे नहीं हमारा संकल्प ही तोड़ दे। संकल्प तोड़ने से क्या होता है, शक्ति खत्म हो जाते हैं। तो क्षेत्र संन्यास लिया महाप्रभु ने। संन्यास लेने के बाद पचवा साल, 10 में संन्यास लिया, 1510, 11-12 भ्रमण किया दक्षिण भारत, 13-14 पुरी में ही रहे, 15 में महाप्रभु ने बंगाल होके वृंदावन आने चाह रहे थे। तो महाप्रभु के जब आप सुने कि वो जा रहा है महाप्रभु, तो गंगाधर पंडित ने बताया कि मैं भी जाऊंगा। इस बात को अभी नहीं बताते हैं, कृष्णदास कविदास बताते हैं जब कटक में आके चित्रतल्ला नदी के पास है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को यहाँ पे बताते हैं। तो महापुरुष चल दिए, चलने के बाद राजा से, राजा बहुत आदर किया राजा से, महापुरुष अति प्रसन्न हो गए, बार बार दंडवत कर रहे थे, बार बार दंडवत कर रहे थे, उनका प्रेम एकदम शरीर ये हो गया थे। तो रामानंद राय ने उनको पकड़ के शांत किया राजा को, तो राजा से कृपा करके शाम को जब जा रहे थे चित्रतल्ला नदी में, महापुरुष एक नाव, नए नए नाव, जहां पे नदी पार करते नया नाव लगाते थे, जहां पे महापुरुष रहते थे नया कुटिया बनाते थे, प्रताप रुद्र के आदेश था सारा उड़ीसा में। तो ऐसे नया नाव लगे रखा और बताया कि महापुरुष जहां पे स्नान किया, एक स्तंभ लगाओ, यहाँ पे स्तंभ बनाओ और घोषणा महातीर्थ करके घोषणा कर दो और मैं नित्य यहां स्नान करूंगा और मेरा मृत्यु भी यहां पे हो जाए। तो यहां पे जब महापुरुष गए इसी समय महापुरुष को पता था कि गदाधर पंडित भी आ गया मेरे साथ में, वो बातचीत हुआ था अभी बताएंगे इस बात को। तो गदाधर पंडित जब संगे ते चलिला क्षेत्र सन्नास नाचारी हो प्रभु निशे दिला। तो जब महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित की जाने का तैयारी कर दिया, महाप्रभु ने क्या बताया, पंडित जी आप क्षेत्र सन्नासी है, आप क्षेत्र सन्नास नहीं सोच सकते हो, आप जगन्नाथपुरी में ही आपका रहना है। तो पंडित कहे जहा तुम्हें तहा नील चाल क्षेत्र सन्नास मर जाओ कर सातल। बहुत बड़े कट्टर बात है। तो बोला ठीक है, आप जहां है वही मेरा क्या है, नीलाचल क्षेत्र है, और मेरा जो क्षेत्र सन्नास है रखाचल चला जाए। तो इसलिए प्रेम है, प्रेम कभी नियम को, नियम नहीं, नियम को उल्लंघन करके प्रेम होता है। नियम में रहती तो राधा रानी आदि कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते, तो उनके तो पति, ये चार पति है ये कृष्ण, तो वो तो प्रेम कर, तो प्रेम को जो है नियम को तोड़ते हैं। पदाधर पंडित ने बोला कि आप जहां है यही नीलाचल है और मेरा क्षेत्र सन्नास, क्षेत्र सन्नास मेरा रसाताल चला जाए। मेरा संकल्प इसलिए मैं क्षेत्र सन्नास लिया था क्योंकि आप जगन्नाथपुरी में है, मेरा संकल्प ये था आपके साथ रहना, आपको अलावा मेरे को ये जगन्नाथपुरी रहने का संकल्प कभी नहीं था। तो आपके अलावा ये संकल्प मेरा कभी नहीं था कि मैं जगन्नाथपुरी में आपके छोड़ के मैं रहू। तो इस संकल्प की जो मूल बात है यहां पे बताते हैं कि उनकी मूल उद्देश्य यही था कि महाप्रभु के साधन का रहना है। कोई ये धाम में रह रहा हो कि ये क्षेत्र है, इसमें इस क्षेत्र में हमारा प्रीति है, नहीं, उनका प्रीति कहा है, महाप्रभु में है। तो इस क्षेत्र संन्यास लिया था कि महाप्रभु के साथ रह सकते, महाप्रभु जब चले जाएंगे तो उनको छोड़ के, तो उनका भी इच्छा हुआ कि मैं भी महाप्रभु के साथ रहूं, क्योंकि मेरा संकल्प है महाप्रभु के साथ रहना। तब ऐसे जब बताए तो और ये बात बताया कि आप जहां है वही नीलाचल है, ये बात भी सच है। जहां पे ठाकुर जी है वो उनके धाम भी वहां पे प्रकट होते, धाम साथ साथ में चलते हैं, बिना धाम में ठाकुर जी नहीं रहते हैं। तो आप जहां है यही नीलाचल है। प्रभु करिहा कर गोपीनाथे रो सेवन पंडित कहे कोटि सेवा तत्पादो दर्शन। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, मेरे साथ में जाने का ठीक है, ठाकुर जी का सेवा करने में बताता हूं। तो बोला यहां रह के आप गोपीनाथ जी का सेवा करो, गोपीनाथ जी की सेवा करो, और यही ठीक है, गोपीनाथ की सेवा छोड़ना, मैं आपको सेवा में लगाया, सेवा छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। तो बोला पंडित जी क्या बोला कि कोटि सेवा, आपके चरण कमल के दर्शन करने के लिए, दर्शन से हमको मिल जाएगा। तो गोपीनाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें बताते हैं कि जैसे ठाकुर जी की चित्रपट देखकर राधा रानी को पूरा प्रेम मिल जाता था, बहुत आनंद हो जाते थे, सुखी हो जाती थी, लेकिन कृष्ण को छोड़कर कभी चित्रपट में आकर उनके मन नहीं जाते थे। इसलिए जो महाप्रभु है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और ये विग्रह है वो विग्रह रूप में है। तो राधा रानी को भी नहीं चाहिए कि ये वो श्री कृष्ण को छोड़कर चित्रपट में उनकी मन जाए और उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। हमेशा जब कृष्ण नहीं रहते थे, यद्यपि कृष्ण और वो जो चित्रपट है उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं, फिर भी जब जब एक बार क्या हुआ था, बहुत समय तक कृष्ण के दर्शन नहीं मिला, तो विशाखा देवी ना चित्रलेखा देवी एक कृष्ण के चित्र बना के दिए थे। जब दर्शन नहीं कर पाते थे कृष्ण के, तो वो उनको दर्शन करते थे ठाकुर जी के, तो उसमें वो आनंदित हो जाते, सुख सुख मिलते थे। तो लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि कृष्ण को छोड़कर चित्रपट में उनकी मन जाए। इसलिए वो एक एक बात जो है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि गोपीनाथ की सेवा के लिए उन्हें तुच्छ होता है, ये है नहीं। ये तथ्य यह है कि स्वयं दोनों कृष्ण है। फिर नारायण के मन जैसे चित्रपट छोड़ के कृष्ण छोड़ के चित्रपट में नहीं जाता था, इसलिए ये जो श्री विग्रह है इससे महाप्रभु के साथ रहना, और वो स्वयं एक ही है, इसलिए महाप्रभु के साथ रहते। तो कोटि कोटि बोला तत्पद दर्शन, गोपीनाथ के सेवा से करोड़ गुना फल आपकी चरण कमल दर्शन करना है। प्रभु कहे सेवा छिवे अमर लागे दोष, इहारो ही सेवा करो अमारो संतोष। तो महाप्रभु देखा इसमें भी बोला ठीक है, आप सेवा छोड़ दोगे मेरा दोष लगेगा, और यहां रहकर सेवा करोगे इसमें मेरा संतोष है, इसमें मेरा संतोष है। तो जो ये सबकी लक्ष्य होना चाहिए, जो इष्ट है उसके संतोष करना, इसमें मेरा खुशी है। तो पंडित जी ने बताया कि नहीं, पंडित कहे शब्द सामार हो पार तुम्हार संग ना जाइब जाइब ये केसर, आई के देखते जाइब ना जाइब तुम्हार लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तारो आमी भागी। तो बताते हैं कि तो बोले ठीक है, तो आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ मैं अकेला जाऊंगा, और प्रतिज्ञा किया और सेवा त्याग की जो दोष है इसके लिए मैं ही भागी हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं आपके ऊपर नहीं दूंगा। और इसके लिए भी हो सकता है, मान लीजिए कोई यहां पे बहुत सुंदर सेवा कर रहा है, कोई इसको लेके जा रहा है, तो उनकी ये इस कथन के अनुसार वो जो ले जा रहा है उनको सेवा से छूटा भगा के दूसरी जगह ले जा रहा है, उनका भी दोष होगा थोड़ा। यहां पर यह बात कर रहा है कि इसलिए आपके आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ नहीं जाने से आपको दोष भी नहीं लगेगा, और मैंने प्रतिज्ञा किया था इसके लिए भी दोष लगेगा, आज सेवा छोड़ दिया प्रभु आपको कोई दोष नहीं लगेगा, ये सारा दोष मेरे ऊपर है, मैं ही आपने से ये सेवा छोड़ दिया, ये दोष सारा मेरा ही है। तो इतना बोलकर और आपके लिए मैं जाऊंगा नहीं, मैं माता जी सची माता को दर्शन के लिए जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा, अकेला अकेला ना करके पंडित गोसाई सही सही में आला से चल दिया, महाप्रभु के साथ नहीं गए। तो अभी ये बात है जो कटक में जाके उनको बुला के लाया, तो उनका प्रेम से महाप्रभु अंदर में बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे महाप्रभु। तो फिर भी महाप्रभु ने उनको, फिर भी जानते थे कि ये भी कटक में है, तो उनको बुलाया, बोला पंडित जी भी इधर कहीं पे होगा, उनको रुका, उनको पता किया कि कहां पे रुका है, उनको बुलाया। तो बताया प्रतिज्ञा सेवा सारी भी यही तुम्हारा उद्देश्य, सही सिद्ध हो सारी आइला दे उद्देश्य, आपका संकल्प क्या था, प्रतिज्ञा और सेवा आपको छोड़ देना, यही आपका जीवन का उद्देश्य था, कार्यों का उद्देश्य था कि ठाकुर जी का सेवा छोड़ देना है और प्रतिज्ञा को त्याग करना है। तो और वही हो गया कि आप उनको छोड़ के आ गया है, आमार संगे रहते चाहो बांछो निज सुख, तुमार दुई धर्म जाए आमार हयो दुख। तो बोला मेरे साथ आप रहने चाहते हो, अपना आत्म सुख चाहते हो, तुम्हारा दोनों धर्म जा रहा है कि प्रतिज्ञा जा रहा है सेवा, दोनों धर्म जा रहा है, इसलिए मेरा दुख है। आप तो मेरे साथ रहे कि आत्मसुख आपको मिलेगा, लेकिन आपका प्रतिज्ञा जा रहा है और आपकी सेवा, इसके लिए मेरा दुख है। तो जितना भी समझाया जगन्ना वो पंडित जी मान ही नहीं रहे थे, तो महाप्रभु अभी ऐसे वचन बोलने जा रहे हैं, मोर सुख चाहो यदि नीला चल चलो, আমার শপত যদি আর কিছু বলো, কিছু ভি হালত সে নেই রুক রহে থে মহাপ্রভু নে আখরি মে বতা দিয়া কি মেরা সুখ চাহতে হো তো আপ জলদি সে নীলাচল চলা যাও, আর মেরা শপথ হ্যা মেরা সৌগন্ধ হ্যা আপ যদি দূসরে বাত করতে হো তো একদম উনকো বাঁধ কর দিয়া, টাইট কর দিয়া। ইসকে উপর আর কুছ বতানে কা হ্যায় নি, যদি কোই ভক্ত হ্যায় ওর কুছ বতা নহীঁ সকতে হ্যায়, ক্যা বতায়েঙ্গে। হর কিসি কা জীবন কি যে উদ্দেশ্য হ্যায় ঠাকুর জি কো সুখ করনা, গুরু গৌরঙ্গ কে সুখ প্রাপ্ত করনা, ইসলিয়ে তো হামলোগ আয়ে হ্যায়। ইসকে নেই আয়া, ইসকে নেই করনা তো ক্যা করনা হ্যায়, আরাম সে রহনে কে লিয়ে করনে কে লিয়ে আয়ে হ্যায়। তো বোলা মেরা সুখ চাহতে হো আর জলদি জলদি চলো জগন্নাথপুরী, আর মেরা সৌগন্ধ হ্যায় দূসরা কো সব বোলতে হো তো শপথ হ্যায়। তো পণ্ডিত জি তো সব জানতেই থে, আর ক্যা বোলেগা। ইতনা বোলনে কে বাদ হি মহাপ্রভু নে বোলা ছোড়ো, নাও ছোড় দো, নাও মে বেঠে বেঠে বাত হো রহে থে, তো ছোড় দিয়া মূর্ছিত হোকে তুরন্ত পানি মে পণ্ডিত জি গির পড়ে। সার্বভৌম কো আজ্ঞা দিয়া কি যাও সার্বভৌম জি ইনকো লে জগন্নাথপুরী লে যাও। তো যা বেছে যা বোলে সার্বভৌম পণ্ডিত নে সমঝায়া কি দেখো প্রভু, প্রভু কি ভি বহুত দুঃখ হো রা হ্যায় তুমকো ছোড় কে জানে কে লিয়ে, লেকিন ক্যা হ্যায় ঠাকুর জি কে সেবা হ্যায়, তোমারা প্রতিজ্ঞা হ্যায়, দেখো আপনা দুঃখ সহন করনে করকে ভি প্রতিজ্ঞা ইয়ে করকে ভি দূসরি ভক্ত কি যো প্রতিজ্ঞা হ্যায় উসকো উনকো রক্ষা করতে হ্যায়। তো উদাহরণ দেতে হ্যায় জেসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মে জেসে ঠাকুর জি নে ভীষ্ম কি প্রতিজ্ঞা থে কি উনকো মে অস্ত্র অস্ত্র পকড়া কে ছোড়ুঙ্গা, তো ঠাকুর জি নে ভি এসেই কিয়া, এসে উনহনে যুদ্ধ কিয়া, তো উনহনে আপনি প্রতিজ্ঞা ছোড়ে দেবো, আর উনকা প্রতিজ্ঞা তো ক্যা থা মে অস্ত্র নেই পকড়ুঙ্গা কুরুক্ষেত্র কি যুদ্ধ মে, আর ইনকা প্রতিজ্ঞা ক্যা থা ভক্তকে অস্ত্র পকড়া কে ছোড়ুঙ্গা। তো বাদ মে বাস এসেই ঠাকুর জি তো তুরন্ত এক চক্কর পহিয়া লেকে ভাগা থা মারনে কে লিয়ে। ইসলিয়ে আপকি ধর্ম কো রক্ষা করনে কে লিয়ে প্রভু জিতনা ভি কঠিনাই হো, যে দুঃখ লাগে আপকি আপকি ধর্ম কো রক্ষা করনে কে লিয়ে প্রভু আপকি বাতো কো রক্ষা করনে কে লিয়ে ও আপকো ইয়ে তো আপকা উসকে লিয়ে আপকো বহুত দুঃখ হ্যায় মহাপ্রভু কে আপকে বিরহ সে। ইসি প্রকার সমঝা বুঝা কে লেকে আয়ে তো ও ক্যা করেগা, ওর কুছ করনে কা হ্যায়ই নেই। মহাপ্রভু বলা মেরা সৌগন্ধ হ্যায় ইসকে বাদ দূসরা বাত করোগে তো, আর ইষ্ট কা খুশ করনা হ্যায় উনকে সাথ জানে মহাপ্রভু কে জানে কে লিয়ে কিস লিয়ে, উনকে সুখী করনা হ্যায়। তো জব বিলকুল সুখী নেই হোঙ্গে আর সৌগন্ধ লে লিয়া তো ক্যা করেঙ্গে, বাপসি আ গ্যা। ইসি প্রকার মহাপ্রভু কে সাথ হমেশা অন্তরঙ্গ সেবা মে রহতে থে, টোটা গোপীনাথ মে মহাপ্রভু কে সাথ আকে ভাগবত পড়তে থে। মহাপ্রভু জব চলে গয়ে আবি ইস লীলা কো সমাপ্ত করকে চলে গয়ে, তো ইসি সময় গদাধর পণ্ডিত কো বতাকে গয়ে থে কি শ্রীনিবাস আয়েগা, উনকো থোড়া ভাগবত শিক্ষা দেনা। এ বড়ে ভাগবত কে শিক্ষক থে গদাধর পণ্ডিত জি নে। তব উনহনে বেঠে রহতে থে, মহাপ্রভু জানে কে বাদ বতাতে হ্যায় কি জেসে পূর্ণিমা কে চাঁদ হ্যায় লেকিন দিন মে ক্যা উনকো আভা কোই দেখাই দেতা হ্যায়, দেখাই ভি নেই দেতা হ্যায় লেকিন পূর্ণিমা কা চাঁদ। তো মহাপ্রভু জানে কে বাদ উনকি শরীর কি কান্তি এসে ঢল গে জেসে আগ কো ঢাকা হুয়া হ্যায়, ইয়া দিন কি যে চন্দ্রমা হ্যায় জেসে হোতে হ্যায় এসেই উনকো দিখাই দে রহা থা। উনকা কোভি জ্ঞান নেই হোতে থে, ভাগবত লেকর খোল কে বেঠ জাতে থে, মহাপ্রভু কো শুনাতে থে, ইস বাত কো উনকি ইয়াদ আ জাতি থি, তো কেবল উসকো দেখতে থে আর আঁখো কি পানি সে পুরা ভাগবত মিট গয়া থা। পহলে ক্যা কেসে ভাগবত থে, হাত সে লিখা হুয়া থা, তো ও মিট গয়া। আর জব শ্রীনিবাস আচার্য আয়ে মিলে আকে খড়া রহা প্রণাম কিয়া, দিখাই ভি নেই দেতা, উনকি ভাবই নেই হ্যায়, উনকো তো কেবল মহাপ্রভু কে ভাব মে নিমগ্ন রহতে হ্যায়। কব দিন হ্যায় রাত হ্যায় ক্যা হ্যায় কুছ ভি জ্ঞান নেই রহতা, কোন আয়া কোন যা রহা হ্যায় কোই নেই। ইসি প্রকার উনকি দিনচর্য বিত রহে থে, তো থোড়া ভাব মে থোড়া কম হো গয়া, তো কোই ভক্ত লোক নে বতায়া দেখো ইয়ে বঙ্গাল সে শ্রীনিবাস আয়া, মহাপ্রভু বলে আচ্ছা, গদাধর নে বতায়া আচ্ছা, মহাপ্রভু নে বতাকে গয়ে থে কি উনকো ভাগবত শিক্ষা দেনে কে লিয়ে আ গয়া, তুনে তুরন্ত গোদ মে বেঠা আর আঁখো কে পানি সে উনকে শরীর কো গিলা কর দিয়া। और बताया, प्रभु ने बताया था भागवत कि अभी मेरा तो मन चित्त कुछ भी ठीक काम ही नहीं कर रहा है, आंखों में भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो भागवत है तो सारा मिट गया, तो आंखों के पानी से पूरा भागवत मिट गए थे। जिस समय सारे भक्तों से मिला, प्रसाद मंगाया, उनको बहुत से प्रसाद खिलाए, इसी प्रकार गदाधर पंडित जिन्हें महाप्रभु के जाने के बाद कुछ ही दिन थे, और ऐसे ही जो भी भक्तों थे पूरी में, ऐसे ही सबका दिन बीतते थे, दिन है रात है कोई ज्ञान नहीं रहता। प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु पूरी में थे, इतना विरह उनका हुआ, पूरी ही छोड़ के भाग गया प्रताप रुद्र महाराज, ऐसे विरह दशा में थे। और इतना बोल के मेरा अपना वाणी को विराम देते हैं, जो भी गलतियां हो जो भी हो आप लोग क्षमा करें। असल गदाधर पंडित के जय, असल प्रभुपाद के, समस्त श्रोता वृंद के हरे कृष्णा।